ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को एक बहुत थोड़े शब्दों में एक ऐसा मंत्र कहो, तरीका कहो, परमपिता परमात्मा को यानी अपने बाप को, अपने साहेब को राजी करने का बताया हुआ है। और जिसके ऊपर परमात्मा राजी हो जाए तो समझिए कि उसका तो कल्याण हो गया। और तरीका क्या बताया हुआ है कि परमात्मा को सच पसंद है, क्योंकि सच और परमात्मा दोनों का अर्थ एक ही है। दुनिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पिता के कितने सारे गुणों का वर्णन है, शक्तियों का वर्णन है। गॉड इज माइट, गॉड इज लाइट, गॉड इज ओशन ऑफ पीस आदि आदि। लेकिन कोई ये नहीं कहते कि गॉड इज ट्रुथ, और ट्रुथ का यहां तक अर्थ लेते हैं कि ट्रुथ इज गॉड, और किसी चीज को वो ये नहीं कहेंगे गॉड इज कंपैशनेट तो कंपैशन इज गॉड, ऐसे नहीं कहेंगे। लेकिन ट्रुथ के लिए कहेंगे कि सत्य की इतना मूल्य है कि सत्य ही भगवान है। और आप जानते हैं कि परमात्मा सतयुग की स्थापना करता है, तो सतयुग में सब सत्य ही सत्य होता है, झूठ का डिक्शनरी में भी नाम नहीं होता। और उसके ऑपोजिट कलयुग में झूठ ही झूठ होता है और सत्य का नाम नहीं होता। तो सत्य सबसे बड़ी शक्ति है, सत्यता की शक्ति। एक दो हफ्ते पहले बाबा की मुरली आई थी, आप जानते हैं सत्य के बारे में, कि अंत समय भी जब किसी की अर्थी जा रही होती है तब भी वो सत्य का ही नाम लेते हैं, सतनाम। तो इसलिए हम लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सत्य बिना मिलावट वाला सत्य वो हो। अब देखिए, जो प्योर सोना है उसकी कितनी वैल्यू है, और अगर उसमें थोड़ी सी मिलावट मिला दो तो वैल्यू घट जाएगी। गोल्ड में सिल्वर ही मिला दो, सिल्वर तो अच्छी चीज है, वैल्यू घट जाएगी। कॉपर मिला दो तो और घट जाएगी, और बिल्कुल ही मिलावट हो जाए तो सोने का सोना सोना ही नहीं रहता। इसी प्रकार से हम लोग सब सच्चे हैं। अगर हम सच्चे ना हो तो बाबा के घर में आ नहीं सकते। लेकिन सत्य के अंदर भी डिग्रीज हैं। जैसे हर चीज के अंदर डिग्रीज होती है, उसी प्रकार के सत्य के अंदर भी डिग्रीज हैं। कैसे? अब हम सब का दिल सच्चा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब एक है सच्चा दिल, सचमुच सच्चा दिल, और दूसरा भी है सच्चा दिल, लेकिन उसके पीछे कुछ और है, स्वार्थ के लिए सच्चा दिल, मतलब के लिए सच्चा दिल। और एक फिर है का सच्चा दिल। जब सिर पर कोई आपद आती है तो सच्चा दिल, जैसे कहते हैं ना कि दुख में सिमरन सब करे, दुख आया तो सच्चा दिल, दुख गया तो सच्चा दिल भी गया। तो इसलिए हम सब गीत गाते हैं, मेरा तो शिव बाबा एक, ठीक है। कौन कहेगा कि शिव बाबा के अलावा हमारा कोई है, तो हम सच्चे हुए ना। लेकिन उसके साथ लेकिन लगा हुआ, उसकी दूसरी लाइन क्या है, मेरा तो शिव बाबा एक तक तो हम सब ठीक है, सच्चे हैं। दूसरी लाइन क्या है, दूसरा ना कोई। अब यहां आप टेस्ट करेंगे तो आपको लगेगा कि अगर गौर से देखेंगे गहराई से तो शिव बाबा भी मेरा और दूसरे भी मेरे, दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। ना हम शिव बाबा को छोड़ना चाहते हैं, ना दूसरों को छोड़ना चाहते हैं। अब उसको सच्ची दिल कहेंगे। इसलिए जब हम सच्ची दिल कहते हैं उसका अर्थ क्या है और उसके फायदे क्या है। सच्ची दिल का अर्थ है कि एक ही शिव बाबा हमारा और उसी से सब प्राप्तियां। आप जानते हैं कि पांच शब्द हमको दिए गए हैं। पहला शब्द है एक नामी, एक नामी। अब एक नाम एक का जो सदा रहे वो शिव बाबा का ही है, क्योंकि गॉड इज वन। और दुनिया में कोई चीज एक नहीं है जो एक हो और सदा एक रहे, इसलिए उसको सदा शिव भी कहते हैं। जो कभी भी ना बदले, अनादि अविनाशी हो, सत्य की परिभाषा है जो था भी और है भी और रहेगा भी, तीनों कालों में रहे, उसको सत्य कहते हैं। और शिव बाबा तीनों कालों में एक समान है। और कोई भी सर्वश्रेष्ठ देवी देवता भी रूप बदलते हैं और उनके स्थितियां भी बदलती हैं, शिव बाबा एक। इसीलिए हमको कहा जाता है कि जब कहते हैं बाप समान बनो, तो कौन से बाप समान, शिव बाप समान स्थिति में और ब्रह्मा बाप समान कर्म में, कर्तव्य में, साकार में। तो इसलिए शिव की स्थिति सदा एक है। अच्छा, इसलिए एक नामी। अब क्या हम सदा एक नामी रहते हैं? और एक नामी का जो रिजल्ट है वो होता है एक रस। क्योंकि अगर आप एक के सदा एक ही के ध्यान में रहेंगे तो उसके सारे गुण आपके अंदर आएंगे और आप एक रस रहेंगे। अब एक रस का क्या मतलब है, हम सुबह से शाम तक टेस्ट करें, क्या हम सुबह से शाम तक एक ही मूड में रहते हैं या हमारा मूड बदलता है? अच्छा, अगर हमारा मूड बदलता है तो जरूर बीच में कुछ मिलावट है, सदा एक रस नहीं रहते। जो सूर्य होता है उसकी कलाएं जो हैं नहीं होती। सूर्य सदा सूर्य है, उसकी किरणें होती हैं, अस्त होता और उदय होता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता सूर्य की कलाएं होती हैं। तो अगर हमने सूर्यवंशी बनना है, शिव बाबा जो शिव बाबा को हम कहते हैं कि हम एक नामी है, बनना है, तो हमारी कलाएं नहीं होगी, अर्थात हमारे मूड नहीं बदलेंगे, हमारी स्थितियां नहीं बदलेंगी। और चंद्रमा की कलाएं होती हैं, तो चंद्रमा अपनी कलाएं कम ज्यादा होती हैं। तो अगर हमारी एक रस स्थिति नहीं है तो हम सोच सकते हैं कि हम चंद्रमा के समान हैं। तो अब एक रस स्थिति लाने के लिए और उसके लाभ हम याद में रखें, एक रस स्थिति के फायदे कितने हैं। जो एक रस स्थिति धारण करते हैं उनके लिए हम कहते हैं एक बल एक भरोसा। अब है शब्द एक बल एक भरोसा, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होगा कि कोई परिस्थिति आएगी तो हम कहेंगे हाँ मेरा तो शिव बाबा, बस तेरे पर ही भरोसा है। अंदर में और भी कुछ सोचेंगे कि शायद शिव बाबा मौके पर मदद ना करे तो मैं किसी डॉक्टर का भी ख्याल करूं या मैं किसी और संसारिक शक्ति का भी ख्याल करूं, तो शक संशय आ गया ना। इसलिए एक बार एक भरोसा उसी को होगा जो सचमुच एक नाम ही होगा। अच्छा, फिर हमको कहा जाता है कि जो सच होता है, सच का व्यक्ति सच तो बैठो नच, अर्थात सच व्यक्ति निश्चिंत होता है, निर्भय होता है, क्योंकि उसको पक्का निश्चय, उसके निश्चय हिलता नहीं है। और अगर जरा सा सच सच्ची दिल से कम है तो साथ साथ ऊपर से सोचेंगे कि हाँ मेरा तो शिव बाबा है, मेरी मदद जरूर करेगा, उसका ही तो मैं बच्चा हूं। लेकिन साथ साथ ये भी होगा, देखें होता है कि नहीं होता, होगा नहीं हुआ तो क्या होगा, अर्थात वो जो निश्चितता है निश्चित वो नहीं होगा, उसको थोड़ा थोड़ा अंदर ख्याल रहेगा। और जो सच्चा होगा उसको निश्चित होगा, सच्चा होगा उसको निर्भय होगा, और जिसके अंदर थोड़ा सा सच्ची दिल नहीं है उसको कहीं ना कहीं भय आएगा। इसलिए भगवान कहता है कि हमको बताया हुआ एक नामी, अर्थात एक के ही नाम को दिल में रखने वाले। फिर हमको कहा जाता है एकाग्र। अब देखिए हर एक सुबह से शाम तक देखे कि हमारा मन एकाग्र रहता है, अगर रहता हो तो फिर हमें ये एक्सरसाइज कराने के लिए बाबा ने कहे कि मन इधर उधर भटकता है। इच्छा सबके अंदर है कि हम योग में बैठे और योग पूरा टाइम हमारा योग रहे, लेकिन बैठते हैं पूरी इंटेंशन से पूरी इच्छा से हमारा योग रहे तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, उसकी गैस धीरे धीरे निकल जाती है। थोड़ी देर में देखेंगे तो टाइम लग रहा है कि मैं एकाग्र हूं, एकाग्र नहीं है, एकाग्र होने की विधियां सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से आधा टाइम तो उसमें निकल गया। तो बुद्धि से यही सोचते रहे मैं एकाग्र होना एकाग्र होना एकाग्र होना, तो जो एक नामी होगा वो फट एकाग्र हो जाएगा। जैसे कई चीजों में जो चीजें हमें पसंद रहती हैं या जिसमें हम प्रैक्टिस करते रहते हैं उसमें फटाफट एकाग्र हो जाते हैं। एक दर्जी को कहो कि सुई के अंदर धागा डाल, और एक साधारण व्यक्ति को कहो सुई के अंदर धागा डाल, फर्क होगा। इसी प्रकार से फिर बाबा कहते हैं एकांत। अब एकांत का मतलब ये नहीं है कि हम किसी खाली जगह जाकर बैठ जाए। अब खाली जगह जाकर भी आपका मन और घूमता रहेगा, इसलिए एक के अंत को जाने, अर्थात परमात्मा। इतना परमात्मा कहते हैं, इतना परमात्मा के बारे में है ज्ञान कि सारी धरती को स्लेट बना लो, सारे वृक्षों को कलम बना लो, सारे जल को स्याही बना लो, विस्तार इतना है। और सार में बाबा बिंदु है। तो अगर हम उसके अंत को जानने के लिए, बाबा कहता है यूं तो मैं रहम दिल हूं, अब बच्चों से मुझे अति प्यार है, और बच्चा अगर ये भी कह देना आज मेरा योग नहीं लगा तो बाबा उसको भी योग गिन लेता है कि चलो बच्चे के मुंह से योग तो निकला, बाबा इतना हमसे प्यार करता है। लेकिन वो ये भी कहता है कि किसी चीज के इर्द गिर्द घूमते रहें, उसके समीप ना रहें, लेकिन एक्चुअली जो आपको वो कहता है करो वो ना करें तो आपको अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए जब बाबा कहता है एकाग्र, तो एक सेकंड में हम एकाग्र हो सकते हैं, एक सेकंड के लिए भी एकाग्र हो सकते हैं। और इसलिए बाबा कहता है एक एक आग्र होने के लिए एक के अंत को जानना जरूरी है, और उसके अंत में रमन करते रहे सारा दिन तब होगा। क्योंकि हमारा योगी लाइफ है, ऐसे नहीं हो सकता कि हम कहें अभी मैंने योग लगाया, अभी मेरा योग पूरा हो गया। तो ये तो पार्ट टाइम योग हो गया ना, लगाने से पहले नहीं था। योग का क्लास शुरू हुआ तो समझो मैंने योग लगाना शुरू किया, योग का पीरियड पूरा हुआ तो मैंने योग को पूरा कर लिया और फिर मैं स्थूल में चले गया। तब करके बाबा कहता है कि आपकी आत्मा में इतनी शक्ति है, रोज मुरली में कहता है वंडर है कि छोटी सी बिंदी है और इसमें इतना सारा सारे युगों का हमारा पाठ भरा हुआ है। तो आप सोचिए कि छोटी सी बिंदी में युगों का पाठ भरा वो मैं हूँ। तो इसके लिए फिर बाबा कहता है कि हमको इकोनॉमी करनी है, क्योंकि अगर हम इकोनॉमी करेंगे तो विस्तार घटेगा। इकोनॉमी का क्या मतलब है कि जिस चीज को जितना चाहिए उतना। इकोनॉमी का ये मतलब नहीं कि कम करना। अब आप देखिए कि हमको सतयुग में जाना है, सतयुग सच्चा युग है, वहाँ हर चीज सत्य है। तो सत्य है तो वहाँ की निशानी क्या है? तो सतयुग में भी हम बोलते हैं, लेकिन कितना बोलते हैं? जितना जरूरी है उतना बोलते हैं, ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम, जैसे व्यक्त बाबा बोलते हैं। जितनी उसमें मिठास भरनी है उतनी भरते हैं। यहाँ काम चला किसी से लेना हो तो ज्यादा चापलूसी करके मीठा बोल देते हैं, जब काम निकल गया तो हमारी भाषा चेंज हो जाती, तो दूसरा व्यक्ति भी समझता है ना इसका स्वार्थ है। सतयुग में ऐसा नहीं होता, यही सत्य है। हम देखते भी हैं, लेकिन कितना देखते हैं? जितना देखना जरूरी है, न कम न ज्यादा। हर इंद्रिय हमारी एक्शन करती है, लेकिन न कम न ज्यादा। इसलिए फिर क्या होता है कि सतयुग में जो चीज जितनी जिस समय जिस स्थान पर जिस विधि से होनी चाहिए उतनी होती है, इसलिए वो सतयुग है। और अगर उससे कम ज्यादा होता है तो फिर त्रेता आ गया, और ज्यादा कम ज्यादा हुआ तो द्वापर आ गया, और कलयुग में फिर क्या होता है उसका उल्टा। वहां है हर काम ठीक स्थान पर ठीक समय पर ठीक विधि से होता है, और कलयुग में क्या हो जाता है, कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है। वहां विधि भी नहीं, समय भी नहीं रहा, स्थान भी नहीं रहा। तो फर्क क्या हुआ कि ये जो आत्मा ने जिसको कहते हैं सारी चीजें फिजिकल तो नहीं, मन जो आत्मा का सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शनरी है उसको कितना सादा हुआ है। तो टेस्ट क्या हुआ, बाबा कहता अपने मन को हम जब चाहें जहां चाहें जितना समय चाहें वहां लगा सके। अब यही हमारी तपस्या है। तो इसलिए अगर हम सच्ची दिल से करते हैं, तो सच्ची दिल का क्या मतलब हुआ, हमारी दादियों को देख लो, वो भी तो इसी दुनिया में रहती हैं, लेकिन उनका एक ही लक्ष्य बाबा बाबा और बाबा, और चलती भी हैं, बोलती भी हैं, सुनती भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन सब बाबा के लिए है। सोचना बाबा और बाबा के कार्य के लिए, बोलना बाबा और बाबा के कार्य के लिए, कर्म करना बाबा और बाबा के कार्य के लिए। तो ये जो 100% है ये है सच्ची दिल, और उससे जितना नीचे आते जाओ तो वो है सच्ची, सारी ही सच्ची है, लेकिन उस प्रकार की सच्ची नहीं है। मान लो आपको आलस से आता है, अब बाबा शिव बाबा को तो छोड़ दो, ब्रह्मा बाबा को देखिए, सदा मंगुस्सा बाबा, याद प्यार भी देता है, भूलता भी है, तो क्या फखर से। तो हमको वो फखर, वो नशा, वो निश्चितता, वो निश्चिंता ही है। तो इसलिए सच्ची मीन्स एवरीथिंग फॉर बाबा, क्योंकि हम शरीर में हैं, हम एक जगह तो बैठ नहीं सकते, लेकिन शरीरधारी में हम कर्म कर रहे हैं तो भी हम योगी हैं, हम योग कर रहे हैं तो भी हमारा सेवा हो रही है, हम धारणा कर रहे हैं तो भी अपने लिए नहीं कर रहे हैं, और हम सेवा कर रहे हैं तो भी सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं। तो सब चीज को जैसे आत्मा मिक्स करती है, अगर आप बिंदी को बड़ी करें तो बिंदी को बड़ी करेंगे तो सर्कल बन जाएगा, और बड़ी करें बड़ा सर्कल बन जाएगा, और बड़ी करें बहुत बड़ा सर्कल बन जाएगा, और उसको घुमाना शुरू कर दे तो साइकिल बन जाएगा, लेकिन जब समेटना शुरू करें तो धीरे 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 वो बिंदी बन जाएगी। तो बिंदी ऐसे नहीं कि बिंदी कोई खड़ी है, चेतन में बिंदी है। तो भाव ये है, हमारा जीवन बाबा के समर्पित हो जाए, और हम जो कुछ भी करें बाबा के समर्पित करें, और खास तौर पे इस सब का सार ये है, जो बाबा ने लास्ट तीन शब्द कहे थे अव्यक्त होने से पहले, वो इसका सार है। निराकारी, निराकारी मीन्स हमारा अनादि अविनाशी परम धाम की स्थिति, वो बाबा की, शिव बाबा की और हमारी एक है। लेकिन निराकारी के नीचे जो बाबा ने कहा निर्विकारी, और उसके नीचे कहा निरहंकारी, ये काम की चीज है। अगर हम साकार लोक में रहकर और हम सोचे मैं निर्विकारी बन जाऊं, हो नहीं सकता, क्योंकि बाबा ने कह रखा है अगर निर्विकारी बनोगे ये शरीर नहीं रहेगा। इसलिए निर्विकारी बनना है तो सूक्ष्म लोक में आओ, तो है ही निर्विकार, वहां आपको ईर्ष्या नहीं आएगी, किसी को आप मार नहीं सकते, गुस्सा नहीं कर सकते, उस लोक ही ऐसा है, वहां विकार हो ही नहीं सकता, इसलिए वहां घृणा नहीं कर सकते, फरिश्ता हो गए। तो अगर हमको निर्विकारी बनना है तो सूक्ष्म लोक में रहें, और अगर हम साकार में आते हैं तो बाबा ने कहा हुआ निरहंकारी, इट मीन्स बॉडी कॉन्शियस नहीं रहे, क्योंकि यहाँ बॉडी हमारे साथ जुड़ी हुई है, और बॉडी में आने से ही विकार पैदा होते हैं, बॉडी में आने से ही सब कष्ट पैदा होते हैं। तो ये तीन शब्दों को भी अगर हम देखेंगे तो हम सच्ची दिल रख सकते हैं। जो बाबा ने कहा इस दुनिया में रहें तो शरीर से अलग रहें, अर्थात निरअहंकारी मीन्स बॉडी से ही अहंकार पैदा होता, और सूक्ष्म लोक में रहे ज्यादा से ज्यादा तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, जैसा देश वैसा वेश, सूक्ष्म लोक में विकार हो ही नहीं सकता, और निराकारी में रहे वो हमारी फाइनल स्टेज है। इसलिए सार रूप में ये है कि हमको जैसा देश वैसा वेश बहुत आसान है करना, आप एक देश में रहकर दूसरे देश की चीज करने की कोशिश करें तो संभव नहीं है। तो यहाँ रहे तो बॉडी, जैसे बाबा कहते हैं विदेही का अभ्यास करें, ज्यादातर हम कोशिश करें हम सूक्ष्म लोक में हैं, तो वहां ये विकार वगैरह ये चीजें आएंगी नहीं, ठंडी गर्मी दिन रात, और थोड़ा थोड़ा हम निराकारी स्थिति में रहें। तो ये है आज की बातचीत। बाकी एक सूचना आपको देनी है कि कभी कभी मैं फिल्म बनाता हूं, 6 फिल्म बनाए थे, अब मुझे ख्याल आया कि सबसे बड़ा जो बाबा की शिक्षा है वो है काम विकार को जीतो। और चीजें करते हैं तो थोड़ा ज्ञान तो आ जाता है, लेकिन मुख्य बात यह है पवित्रता ही। बाबा कहता है सुख शांति की जननी है सतयुगी पावन दुनिया है। तो इसलिए काम विकार को जीतने के लिए हमने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है ऐसा पतन। तो वो फिल्म जो है तैयार हो गई है, 1 जनवरी को पीस ऑफ माइंड पे रात को 8 बजे वो दिखाई जाएगी, और 2 जनवरी को नए साल में दोपहर को 2 बजे वो दिखाई जाएगी। मैं आप भाई बहनों से नहीं कह रहा, जो इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो अगर उसको देखेंगे तो अच्छा होगा। तो इसलिए फाइनल ये है कि अगर हमने सच्ची दिल धारण करनी है तो वैसे तो बाबा ने कहा हुआ ब्रह्मा बाबा को देखो। अब ब्रह्मा बाबा को कईयों ने देखा है, कईयों ने नहीं देखा है। ब्रह्मा बाबा की सुने उनके जो कदम बताए हुए हैं तो एक एक कदम को हम फॉलो कर सकते हैं। और बाबा कहते हैं फॉलो करना बहुत आसान है, आपको नया रास्ता नहीं ढूंढना, बाबा ने ऐसा किया करो। और कहा हुआ है कि कोई भी विचार करो, बोल करो, कर्म करो, संकल्प करो तो सोचो ये बाबा जैसा है, नहीं है तो रिजेक्ट कर दो, ये भी ठीक है। और उसके बाद जिन दादियों से हमने पालना ली हुई है वो बाबा ने इसी निमित्त रखी, तो उनको भी हम लोग देखें तो उनका जीवन देखेंगे कि उन्होंने इस दुनिया में रहते उनको और दुनिया का पता ही नहीं है, और रहते हैं पर्पस क्या है कि हमें पावन बनाना है और प्रभावित करना है, प्रभावित होना नहीं है। तो पहले बात यह है कि हमें किसी मनुष्य आत्मा से ना प्रभावित होना, कितना भी अच्छा लायक होगा उसने अपनी काबिलियत भी बाबा से ही ली है तो क्रिएटर तो वो है, और ना किसी को प्रभावित करने का कोशिश करना है। निमित नरम निर्माण रहेंगे तो निर्माण का कार्य अच्छा होगा। ओम शांति।